एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे सपने और हमारी संस्कृति को आकार देती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की। लेकिन आज हम सिर्फ रेड कारपेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं करेंगे। हम पर्दे के पीछे की उस मशीन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने कैलिफोर्निया के एक छोटे से हिस्से को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक ताकत बना दिया।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे पीटर डैशरनी। हम उनकी दो किताबों हॉलीवुड अमेरिकन कल्चर, कॉमर्स एंड ग्लोबल पावर और हॉलीवुड अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के विचारों की गहराई में उतरेंगे।
सही। तो हमारा मकसद ये जानना है कि हॉलीवुड का असली जादू क्या है। क्या ये सिर्फ महान कहानियों का कमाल है या इसके पीछे एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना, बेहद शातिर और लचीला बिजनेस मॉडल है
जो हर चुनौती को अपने फायदे में बदल लेता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं।
तो इस विषय को समझने के लिए पीटर डैचरनी ये नाम क्यों जरूरी है?
देखिए, वो एक बेहतरीन शख्सियत है क्योंकि वो सिर्फ फिल्मों के इतिहासकार नहीं है जो पुरानी फिल्मों की तारीखें याद रखते हों।
अच्छा।
हाँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में सिनेमा और मीडिया स्टडीज के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता कानून में भी है।
ओहो, कानून और बौद्धिक संपदा में, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
बिल्कुल। तो वो हॉलीवुड को 3 अलग अलग नजरियों से देखते हैं, एक कलाकार, एक वकील और एक बिजनेस पर्सन के तौर पर।
ये तो बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है।
और यही नजरिया हमें हॉलीवुड की असली तस्वीर दिखाता है। डैचरनी के मुताबिक हॉलीवुड की कहानी सिर्फ सितारों और डायरेक्टर्स की कहानी नहीं है, ये वकीलों के दाव पेंच, स्टूडियो मालिकों की बिजनेस स्ट्रेटजीज और नई टेक्नोलॉजी से लड़ने और फिर उसे अपनाने की कहानी है।
मतलब पैसा कहाँ से आता है, ताकत किसके हाथ में है, ये सारी बातें।
हाँ, और नियम कैसे बनाए और तोड़े जाते हैं।
तो अगर डैचरनी की इन किताबों का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो क्या होगा?
वो ये है कि हॉलीवुड की कामयाबी का राज उसकी कला में नहीं, बल्कि किसी गिरगिट की तरह रंग बदलने की क्षमता में है।
गिरगिट की तरह रंग बदलना?
हाँ, डैचरनी कहते हैं कि हॉलीवुड लॉस एंजलिस की एक जगह का नाम नहीं है, ये एक आइडिया है, एक ग्लोबल सिस्टम है।
एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी बदलाव, किसी भी खतरे को निगल कर और बड़ा हो जाता है।
बिल्कुल। सोचिए, जब सरकार ने सेंसरशिप का डर दिखाया
तो हॉलीवुड ने खुद ही नियम बना लिए।
सही। जब टेलीविजन आया और लोग सिनेमा हॉल जाना बंद करने लगे
तो हॉलीवुड ने टीवी के लिए ही प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए।
हाँ, और जब इंटरनेट और पायरेसी का खतरा आया तो उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बना दिए। ये किताब इसी अद्भुत लचीलेपन की कहानी है।
तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आखिर हॉलीवुड बना कैसे? मतलब फिल्म इंडस्ट्री न्यूयॉर्क या चिकागो में क्यों नहीं बस गई? कैलिफोर्निया में ऐसा क्या था?
इसकी 2 बड़ी दिलचस्प वजह है। पहली तो सीधी सादी है, मौसम और जगह।
मौसम?
हाँ, कैलिफोर्निया में साल भर धूप रहती है जो शुरुआती दिनों में शूटिंग के लिए बहुत जरूरी थी, और वहाँ सब कुछ था, रेगिस्तान, पहाड़, समंदर, शहर।
अच्छा, मतलब एक ही जगह पर आप वेस्टर्न फिल्म भी शूट कर सकते थे और गैंगस्टर मूवी भी।
बिल्कुल। और दूसरी वजह थोड़ी शरारत भरी है।
वो क्या?
उस जमाने में फिल्म बनाने की ज्यादातर टेक्नोलॉजी के पेटेंट थॉमस एडिसन की कंपनी के पास थे।
हाँ, जो ईस्ट कोस्ट पर थी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में।
और एडिसन की कंपनी किसी और को आसानी से फिल्में बनाने नहीं देती थी, वो उनपे मुकदमे कर देते थे। कैलिफोर्निया उनसे हजारों मील दूर था।
अरे वाह, तो एक तरह से फिल्म बनाने वाले लोग एडिसन के कानूनी शिकंजे से भाग कर वहां गए थे।
हाँ, कुछ हद तक तो यही बात है। दूर होने की वजह से उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने और नए नए प्रयोग करने की आजादी मिली, और यहीं से स्टूडियो सिस्टम की नींव पड़ी।
हॉलीवुड का सुनहरा दौर है ना? मैंने सुना है इसके बारे में, MGM, पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स, ये बड़े बड़े नाम। ये सिस्टम काम कैसे करता था?
ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक शानदार उदाहरण था।
वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब?
इसका मतलब है कि ये बड़े स्टूडियो फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते थे। कहानी लिखने से लेकर एक्टर और डायरेक्टर को हायर करने, फिल्म शूट करने
और फिर उसे अपने ही सिनेमाघरों में दिखाने तक,
सब कुछ उनके हाथ में था।
मतलब दर्शकों तक क्या पहुंचेगा, इसका पूरा कंट्रोल उनके पास था।
एक्टर्स का क्या होता था? एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेखक सब स्टूडियो के मुलाजिम होते थे। उन्हें 7-7 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाता था।
7 साल?
हाँ, स्टूडियो तय करता था कि वो कौन सी फिल्म करेंगे, पब्लिक में कैसे दिखेंगे, यहाँ तक कि उनकी निजी जिंदगी पर भी कंट्रोल होता था।
अरे बाप रे,
ये सचमुच में एक ड्रीम फैक्ट्री थी जहाँ सपनों को एक असेंबली लाइन पर बनाया जाता था।
लेकिन इस फैक्ट्री में क्या बनेगा, इस पर भी तो कोई ना कोई लगाम होगी। यहीं पर हेज कोड की बात आती है, सही है?
बिल्कुल सही। 1920 और 30 के दशक में हॉलीवुड में कुछ बड़े स्कैंडल्स हुए जिससे जनता में और धार्मिक समूहों में काफी नाराजगी थी। सरकार पर दबाव बन रहा था कि वो फिल्मों पर सेंसर लगाएं।
और हॉलीवुड को सरकारी सेंसरशिप से डर लगता था।
हाँ, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकती थी। तो उन्होंने सरकार को दूर रखने के लिए क्या किया?
खुद को ही सेंसर कर लिया।
बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी। उन्होंने मिलकर एक सेल्फ सेंसरशिप कोड बनाया जिसे हेज कोड कहा गया।
अच्छा, और इसमें क्या था?
इसमें लिखा था कि फिल्मों में क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं। जैसे कोई अपराधी हमेशा सजा पाएगा, पादरियों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, किसिंग सीन ज्यादा लंबे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह।
ये तो बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव था।
हाँ, इससे उन्होंने सरकार को दूर रखा और ये भी पक्का किया कि उनकी फिल्में पूरे अमेरिका के, खासकर छोटे शहरों के पारिवारिक दर्शकों को पसंद आए।
लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो हर चीज को कंट्रोल करता हो, वो हमेशा तो नहीं चल सकता।
नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी चुनौती आई खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से।
अच्छा।
1948 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसे पैरामाउंट डिक्री कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि स्टूडियोज का फिल्म बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पर कब्जा करना एक तरह की मोनोपोली है
और वो गैर कानूनी है।
हाँ, तो कोर्ट ने इस वर्टिकल इंटीग्रेशन को तोड़ दिया। उन्होंने स्टूडियोज को आदेश दिया कि वो अपने सिनेमा हॉल बेच दें।
इस एक फैसले ने 50 साल पुराने स्टूडियो सिस्टम की कमर तोड़ दी होगी
पूरी तरह से। अब स्टूडियो फिल्में तो बना सकते थे, लेकिन उन्हें कहाँ दिखाना है ये उनके हाथ में नहीं था। और यहीं से स्वतंत्र प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े सितारों की ताकत बढ़ने लगी।
अच्छा, तो आज के जमाने के जो पावरफुल एजेंट्स हैं, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई है।
बिल्कुल। और कानून के बाद सबसे बड़ा खतरा आया टेक्नोलॉजी से,
यानी टेलीविजन।
हाँ, जब टीवी आया तो लोग कहते थे कि अब सिनेमा खत्म हो जाएगा।
शुरुआत में हॉलीवुड ने भी यही सोचा होगा।
बिल्कुल, वो टीवी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। लोगों ने सिनेमा हॉल जाना कम कर दिया, लेकिन फिर हॉलीवुड को डेचोनी वाली बात समझ आई, अडैप्ट करो।
अगर हम टीवी को हरा नहीं सकते तो क्यों ना उसके साथ मिल जाएं?
हाँ, तो उन्होंने दुश्मन को ही ग्राहक बना लिया। स्टूडियोज ने टीवी चैनलों के लिए टीवी शो बनाने शुरू कर दिए
और अपनी पुरानी फिल्मों की लाइब्रेरी के राइट्स टीवी को बेच दिए होंगे।
सही, जिससे उन्हें बैठे बिठाए करोड़ों डॉलर मिले। जिस टीवी को वो श्राप समझ रहे थे, वो उनके लिए वरदान बन गया।
और यही कहानी फिर VCR और होम वीडियो के साथ दोहराई गई है ना?
हाँ, बिल्कुल वही कहानी। जब VCR आया तो हॉलीवुड के स्टूडियो हेड जैक वेलेंटी ने कहा था कि VCR फिल्म इंडस्ट्री के लिए वैसा ही है जैसा बॉस्टन स्ट्रैंगलर एक अकेली महिला के लिए है।
अरे, मतलब वो बहुत डरे हुए थे।
बहुत ज्यादा। उन्होंने VCR बनाने वाली कंपनी सोनी पर केस कर दिया। वो केस हार गए और फिर उन्हें समझ आया
कि लोग घर पर फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हैं।
बिल्कुल। तो हॉलीवुड ने कैसेट और DVD बेचने और किराए पर देने का एक नया बिजनेस ही खड़ा कर दिया। होम वीडियो मार्केट से हॉलीवुड ने सिनेमा घरों से भी ज्यादा पैसा कमाया।
और आज वही कहानी हम स्ट्रीमिंग के साथ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स। हाँ, पहले नेटफ्लिक्स को बारी खिलाड़ी माना जाता था, आज वही हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है।
ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन आज तो हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका से बाहर होती है। इस ग्लोबलाइजेशन ने हॉलीवुड को कैसे बदला है?
ये आज के हॉलीवुड की सबसे बड़ी सच्चाई है। किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की 60-70% कमाई अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होती है।
60-70%?
हाँ, और इसका फिल्मों की कहानी और कास्टिंग पर सीधा असर पड़ता है।
जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। डेचेनी बताते हैं कि अब ऐसी फिल्में ज्यादा बनती हैं जिनमें डायलॉग कम और एक्शन और स्पेशल इफेक्ट ज्यादा हों।
क्यों?
क्योंकि एक्शन की कोई भाषा नहीं होती, वो पूरी दुनिया में समझ आता है।
बिल्कुल। और चीन के बाजार को खुश करने के लिए तो फिल्मों में बदलाव तक किए जाते हैं। जैसे आयरन मैन 3 का एक खास वर्जन सिर्फ चीन में रिलीज किया गया था।
अच्छा, उसमें क्या अलग था?
उसमें वहाँ के बड़े एक्टर्स के सीन जोड़े गए थे। या फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में कॉमिक्स का एक तिब्बती किरदार था जिसे बदल कर एक सेल्टिक महिला बना दिया गया ताकि चीन नाराज न हो जाए।
वाह, मतलब वो फिल्म की कहानी लॉस एंजलिस में नहीं बल्कि बीजिंग और शंघाई के बाजारों को देखकर लिखी जा रही है।
काफी हद तक यही आज का ग्लोबल हॉलीवुड है।
तो अगर हमें इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य संदेश निकालने हों तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहला तो वही है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं।
हाँ, पहला और सबसे बड़ा संदेश है अनुकूलन, अडेप्टेशन। हॉलीवुड की असली ताकत उसकी कला नहीं बल्कि हर चुनौती को अपनाकर उसे मुनाफे में बदलने की क्षमता है।
दूसरा शायद कला और कॉमर्स के बीच का तनाव होगा। मतलब हॉलीवुड हमेशा से एक बिजनेस रहा है जहां कलात्मक फैसले भी आखिरकार बॉक्स ऑफिस की कमाई को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
हाँ, आज की फ्रेंचाइज फिल्में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये फिल्में कम और प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं।
सही बात है।
तीसरा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो ये है कि हॉलीवुड एक मिथक बनाने वाली फैक्ट्री है। ये सिर्फ फिल्में नहीं बेचता, ये अमेरिकन ड्रीम का आइडिया बेचता है
कि कोई भी मेहनत करके सफल हो सकता है।
हाँ, और इसने एक सदी तक पूरी दुनिया में अमेरिका की एक खास आकर्षक छवि बनाई है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है।
और चौथा, जैसे हमने अभी बात की, ग्लोबलाइजेशन का असर। आज की हॉलीवुड फिल्में पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर बनाई जाती हैं। भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे एवेंजर्स एंड गेम बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से भी ज्यादा कमा लेती है।
बिल्कुल, ये इसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नतीजा है। डेचिनी की किताबों से कुछ विचार तो ऐसे हैं जो दिमाग में बस जाते हैं।
जैसे पहला, हॉलीवुड एक जगह से ज्यादा एक ग्लोबल ब्रांड और एक सिस्टम है। मतलब असली हॉलीवुड कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में नहीं है बल्कि दुनिया भर के मीडिया कॉरपोरेशंस के बोर्डरूम और बैंक में है।
और दूसरा, लगभग हर वो टेक्नोलॉजी जिसे हॉलीवुड का अंत माना गया उसी को हॉलीवुड ने अपनाकर कमाई का एक नया जरिया बना लिया।
टीवी, वीसीआर से लेकर इंटरनेट और एआई तक, सबके लिए सच है ये।
हाँ, और तीसरा जो आज की फिल्में देखने वालों के लिए बहुत जरूरी है, आज की ब्लॉकबस्टर फिल्में ग्लोबल दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।
इसलिए उनमें विजुअल तमाशा और आसान थीम ज्यादा होती हैं ताकि वो भाषा और संस्कृति की सीमाओं को आसानी से पार कर सकें।
और ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमें एक बेहतर और जागरूक दर्शक बनाती है।
वो कैसे? मतलब अगली बार जब मैं कोई फिल्म देखूं तो मुझे क्या अलग सोचना चाहिए?
अगली बार जब आप कोई बड़ी मार्वल फिल्म देखें तो सिर्फ सुपर हीरो की लड़ाई पर ध्यान न दें, ये भी सोचें कि ये कहानी इतनी सरल क्यों रखी गई है, इसमें इतने सारे अलग अलग देशों के एक्टर्स क्यों हैं, फिल्म के विलन का किसी खास देश से कोई लेना देना क्यों नहीं है। आपको फिल्म के पीछे का पूरा बिजनेस मॉडल दिखाई देने लगेगा।
और शायद ये भी समझ आएगा कि क्यों आजकल ओरिजिनल कहानियों वाली छोटी फिल्में कम और बड़े बड़े सीक्वल और प्रीक्वल ज्यादा बन रहे हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ रचनात्मकता की कमी नहीं बल्कि एक सुरक्षित बिजनेस फैसला है। इसे मीडिया लिटरेसी कहते हैं।
सही बात है, और बिजनेस की दुनिया के लिए भी इसमें बहुत बड़े सबक हैं।
हाँ, कोई भी इंडस्ट्री हॉलीवुड से सीख सकती है कि बाजार में आने वाले बदलावों से डरने की बजाय उन्हें कैसे अपनाया जाए
और कैसे अपने सबसे बड़े खतरों का ही अपना सबसे बड़ा अवसर बना लिया जाए।
बिल्कुल,
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि हॉलीवुड ने अपने हर दुश्मन को पहले कानूनी तौर पर हराने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहा तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा ग्राहक बना लिया। टीवी, वीसीआर, स्ट्रीमिंग,
ये टिके रहने का एक अद्भुत मॉडल है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि हॉलीवुड की सारी चमक दमक, ग्लैमर, अवार्ड नाइट्स, ये सब एक बहुत ही ठंडे दिमाग से चलने वाली औद्योगिक मशीन के लिए पैकेजिंग का काम करती है। एक कला जो एक फैक्ट्री भी है।
हाँ।
और एक बार जब आप उस मशीन के पुर्जों को समझ जाते हैं तो आप फिल्मों को पहले की तरह कभी नहीं देख पाते, आप कला के साथ साथ कारोबार को भी देखने लगते हैं।
हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज जब भारत, मतलब बॉलीवुड, टॉलीवुड और कोरिया से, यानी के ड्रामा, ऐसा कंटेंट बन रहा है जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो क्या हॉलीवुड के एक सदी पुराने अडैप्ट करने के मॉडल को पहली बार कोई ऐसी चुनौती मिलेगी जिसे वो अपने सिस्टम में शामिल नहीं कर पाएगा, या वो इसे भी निगलकर और बड़ा हो जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक पे एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।